हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 15-16। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः करामहयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्भरधारुणा बिम्बफलधरुष्ठा पुरीन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति रे ये स्तवे वेदे साङ्गपक्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेना मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा दीवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंध चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 15। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। अस्तु उत्कल स्वामी। ये बता रहे हैं कि वो क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था कि वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवत महापुराण लिखने का कैसे, उन्होंने पूछा था ना उनको प्रेरणा कैसे हुई, उसके विषय में बता रहे हैं। वे कह रहे हैं सकदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचि विविक्त एक आसीना उदिते रविमंडले उदिते रविमंडले सकदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचि विविक्त एक आसीना उदिते रविमंडले सकदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचि विविक्त एक आसीना उदिते रविमंडले सकदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचि विविक्त एक आसीना उदिते रविमंडले सकदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचि विविक्त एक आसीना उदिते रविमंडले। शब्दों का स मतलब वह, कदाचित एक बार, सरस्वत्या अर्थात सरस्वती नदी के तट पर, उपस्पृश्य जलम शुचि, उपस्पृश्य का मतलब होता है प्रातः कालीन आश्वान से निवृत्त होकर, जलम शुचि, जलम मतलब जल से शुचि अर्थात पवित्र किया गया, विविक्त एक आसीन, विविक्त अर्थात एकाग्रता के साथ, एक आसीन अर्थात अकेले आसीन मतलब इस प्रकार बैठे हुए, उदिते उदय होने वाले रवि मंडले सूर्य के गोले का। अनुवाद, एक बार सूर्य उदय होते ही उन्होंने मतलब पहले जिस पहले वाले श्लोक में किसकी बात हो रही है, कौन पैदा हुए थे, वेद व्यास जी, तो उन्हीं के बारे में आगे कह रहे हैं। वेद व्यास जी सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए वे एकांत में बैठ गए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बोलते सरस्वती नदी हिमालय पर्वत के बद्री आश्रम के क्षेत्र में बहती है, अतएव यहाँ पर जिस स्थान की ओर इंगित किया जा रहा है वह बद्री का आश्रम में शाम्य प्रास है, जहाँ श्री व्यास देव रह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालम् पङ्गुं लङ्घयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। अत्यंत ही सुंदर सूत गोस्वामी बता रहे वेद व्यास जी के विषय में। कदाचित एक बार क्या हुआ, सरस्वती नदी कहाँ पर है, श्री प्रभुपाद जी बोलते हिमालय पर्वत के बद्री का क्षेत्र में। अब उन्होंने एक जगह भी पूछी थी, स्थान हम कौन सा है, श्लोक नंबर 4.3 में उन्होंने पूछा था कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् स्थाने वा केन हेतुन, कि वो स्थान कौन सा था, तो वो बता रहे हैं कि वो सरस्वती नदी का किनारा यानी बद्री का आश्रम। बद्री का आश्रम में शम्य प्रास है जहाँ पर के वेद व्यास जी रहते हैं, तो वो स्थान बता रहे हैं। उन्होंने क्या किया, एक बार यहाँ पर दो शब्द ऐसे आए हैं, एक उपस्पृश्य जलम शुचि और दूसरा उदिते रवि मंडले, यानी कि ये अभी सूत्र गोस्वामी बता रहे हैं कि उस समय जब उन्होंने क्या किया था, विविक्त एक आसीन, उन्होंने एक आसीन पर बैठ गए थे। क्यों, क्या करने के लिए? विविक्त यानी मन को एकाग्रित करने के लिए। यहाँ पर ये बात को इंगित कर रहे हैं सूत्र गोस्वामी कि यदि जीव को मन को एकाग्र करना है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा। एक तो उपस्पृश्य का मतलब होता है प्रातः कालीन, यानी अभी सूर्य उदय नहीं हुआ हो, यानी कि सूर्य उदय होने वाला हो उससे पहले प्रातः कालीन वो समय होता है। देखो हर समय जो है उसके समय के भी गुण होते हैं। जैसे यह संसार जो है वो पूरा गुणों से बना हुआ है, तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। वास्तव में जो प्रातःकालीन का समय होता है ना, वो समय सत्वगुण का है। उसमें क्या है कि हम जो भी आध्यात्मिक कार्य करना चाहेंगे ना, तो वो बिल्कुल सही तरीके से एकाग्रता के साथ हम कर सकेंगे, क्योंकि उस समय बना ही सुबह का समय किस लिए है, भगवान की भक्ति करने के लिए। देखो उस समय कोई भी कार्य नहीं होता, जो भौतिक लोग होते हैं ना वो उस समय सो रहे होते हैं। भगवान भी कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, कि संयमी जिस टाइम पर जागते हैं, संयमी वही होता है जो भगवान का भक्त है। क्योंकि भगवान ने क्या कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तस्मात् संयते इंद्रिय, यानी जो अपनी इंद्रियों को संयम करता है वो सुबह के समय, जो प्रातः कालीन का समय होता है उसमें वो सोता नहीं है, बल्कि उसमें क्या करता है, भगवान के साथ अपने संबंध को निर्माण करने के लिए मन को एकाग्र करने का कार्य करता है। और वो टाइम जो है वो सुबह को होता है। हमारे शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि तीन प्रकार के स्नान होते हैं। सुबह जो मतलब प्रातःकालीन स्नान होता है ना, वो देव स्नान होता है। उसके बाद जो 6 बजे तक करते हैं वो मनुष्य स्नान होता है। और जो सूर्य उदय होने के बाद जो स्नान करते हैं वो क्या होता है, राक्षस स्नान होता है। यानी कि उसकी गिनती जो सूर्य उदय होने के बाद उठते हैं या स्नान करते हैं, जो शास्त्र जो है वो उनकी गिनती राक्षसों में करते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि मन एकाग्र करना है, यदि भगवान की भक्ति, क्योंकि बाकी हम जो भी भगवान की भक्ति के लिए कर रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं भौतिकता शामिल होती है। यानी अगर हम प्रसाद बना रहे हैं तो हृदय में क्या होता है कि हम बना रहे हैं, घर वाले भी खाएंगे और भगवान को भोग लगा देंगे, यानी कि वो सेपरेटली कृष्ण के लिए नहीं होगा। इसके अतिरिक्त भी कोई भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा, जैसे कि इधर जा रहे हैं तो भी आउटिंग भी हो रही है और फिर इधर से सत्संग भी सुनेंगे या प्रसाद भी खा रहे हैं, तो ऐसा मन में कुछ भी दूसरा भी कहीं ना कहीं इंद्रिय तृप्ति होती है थोड़ी सी। लेकिन जो प्रातःकालीन का जो भगवान के लिए समय निकालते ना, वो एकदम शुद्ध भक्ति है। यानी भक्ति में और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन वो समय जो हम भगवान के लिए सुबह सवेरे अपनी नींद का त्याग करके, बिस्तर को छोड़कर भगवान का पवित्र नाम का जप करते हैं, वो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर सूत गोस्वामी कि मन को यदि भगवान के साथ एकाग्र करना है, यदि भगवान के साथ अपने दिव्य संबंध को स्थापित करना है, तो उसके लिए समय क्या है, उदिते रवि मंडले, यानी सूर्य उदय होता है ना उससे पहले, उस टाइम पर आप वो क्या किया, उन्होंने वो सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया। सबसे पहले उन्होंने पवित्र जल से आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए एकांत में बैठ गए। अब क्योंकि अब वो मन विचलित होगा तभी एकाग्र करने के लिए बैठे हैं, और एकाग्र करने के लिए बैठे हैं तो उन्होंने क्या सोचा वो आगे बताएंगे। अभी तो क्या बता रहे हैं कि वेद व्यास जी भद्रिका आश्रम में शाम्य प्रयास जो स्थान है, वहां पर जहाँ पर वेद व्यास जी बैठे रहते हैं, वहां पर उन्होंने प्रातः काल में सरस्वती के जल से आचमन किया और मन को एकाग्र करने के लिए एक स्थान पर बैठ गए। यहाँ पर स्थान को भी महत्व दिया गया है कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो स्थान जो होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जहाँ पर हम बैठ के भजन करते हैं। आगे कहते हैं श्लोक नंबर 16 में, परावरक्यः सर्वेषि कालीना व्यत्तरं हसा युग धर्म व्यतिकारम प्राप्तं भुवि युगे युगे परावरक्यः सर्वेषि कालेनाव्यक्तरंहसा युगधर्मव्यतिकारम् प्राप्तं भुवि युगे युगे परावरक्यः सर्वेषि कालेनाव्यक्तरंहसा युगधर्मव्यतिकारम् प्राप्तं भुवि युगे युगे परावरक्यः सर्वेषि कालेनाव्यक्तरंहसा युगधर्मव्यतिकारम् प्राप्तं भुवि युगे युगे परावरक्यः सर्वेषि कालेनाव्यक्तरंहसा युगधर्म व्यतिकारम् प्राप्तं भुवि युगे युगे परावरक्यः सर्वेषि कालेनाव्यक्तरंहसा युगधर्मः स युगधर्मव्यतिकारम् प्राप्तं भुवि युगे युगे। शब्दों का अर्थ, परावर यानी भूत तथा भविष्य का ज्ञ अर्थात जानने वाला, सह ऋषि वो ऋषि यानी व्यासदेव जी, कालेन अव्यक्त रहसा, कालेन अर्थात समय पाकर अव्यक्त अप्रकट रमहसा महान शक्ति से, युग धर्म व्यतिकरम, युग धर्म अर्थात युग के अनुरूप कार्य, व्यतिकरम यानी विसंगतियां या दोष, प्राप्तम भुवि युगे युगे, प्राप्तम यानी प्राप्त होने पर, भुवि यानी पृथ्वी पर, युगे युगे विभिन्न युग में। अनुवाद, महर्षि वेद व्यास जी ने युग के कर्तव्यों में विरोध देखा, काल क्रम से पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। व्यासदेव जैसे ऋषि मुक्त जीव होते हैं, अतएव वे भूत तथा भविष्य को स्पष्ट देख सकते हैं, अतएव वे कलयुग की विसंगतियों को देख सके और तदनुसार उन्होंने जन सामान्य के लिए ऐसा प्रबंध किया जिससे वे इसे इस अंधकारमय युग में प्रगतिशील जीवन बिता सके। इस युग के सामान्य लोग नाशवान पदार्थ के प्रति अधिक रुचि दिखाते हैं, अज्ञानता के कारण वे जीवन निधि का मूल्य नहीं समझ पाते और आध्यात्मिक ज्ञान से आलोकित नहीं हो पाते। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इस श्लोक में सूत गोस्वामी जो ये अभी जो युग है ना कलयुग, उसके विषय में बता रहे हैं। हालांकि वो क्या था, अभी कलयुग स्टार्ट नहीं हुआ था। कौन सा युग था, जैसे हमने पहले में पढ़ा द्वापर समनु प्राप्ति के द्वापर युग में, जो कि उस बार त्रेता के बाद आया था द्वापर युग, उसमें ऐसा हुआ था कि वेदव्यास जी आए थे, अब उसी युग में आए थे तो उसी युग में सोच रहे थे, लेकिन वो सोच किसका रहे थे, नेक्स्ट युग के बारे में। क्यों? क्योंकि परावर ज्ञ, परावर माना भूत तथा भविष्य, ज्ञ माना जानने वाला। ये ऋषि ऐसे थे जो भूत को भी जानते थे, भविष्य को भी जानते थे, भले वो द्वापर में है लेकिन द्वापर युग में भी वो त्रेता को भी जानते हैं, सत्ययुग को भी जानते हैं और आने वाले कलयुग के विषय में भी जानते हैं। तो अब आने वाले कलयुग के विषय में जानते हैं तो महामुनि जो होते हैं, ऋषि जो होते हैं, वास्तविक जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, वो आने वाले खतरे, जो आने वाली विपदा होती है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई उपाय बताते हैं, क्योंकि वो भूत भविष्य वर्तमान को जानते। तो वास्तव में भक्त होने का मतलब ही यही है कि जो जीव है उसके कल्याण के लिए कार्य करे। कालेन व्यक्त रमहसा, यानी कि संसार में भगवान में कुछ भगवान की कुछ ऐसी अप्रकट शक्तियां होती हैं, वो क्या होता है जैसे युग परिवर्तन होता है तो उसके अंदर कोई ना कोई परिवर्तन भी कर देती है। तो यहाँ लिखा युग धर्म व्यतिकरण, यानी कि युग का जो धर्म है, युग के अनुरूप जो कार्य है, वो अब दूसरा युग आने लगा तो फिर कुछ दोष आने शुरू हो गए। अब क्योंकि द्वापर खत्म हो रहा है और द्वापर खत्म होने के बाद कलयुग आएगा तो उसके अनुसार दोष प्रकट होने लगे और उससे क्या होता है प्रातम भूमि योगे योगे। तो वो कह रहे हैं कि जब भी इस तरह से काल क्रम चेंज होता है तो फिर पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियां के कारण जो है ये हर युग में ऐसा होता रहता है। कैसा होता रहता है कि व्यक्त व्यक्तिकरम, ये जो व्यक्तिकरम होता है यानी कि दूसरे युग के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं वो अब आधुनिक उसके बाद जो युग आता है वो क्वालिटीज खत्म हो जाती हैं, कुछ दोष आ जाते हैं। अब क्योंकि वो ऋषि थे और परावरज्ञ थे यानी भूत और भविष्य को देख सकते थे, इसलिए उन्होंने कलयुग के दोषों को भी देख लिया कि अब कलयुग आएगा तो उसमें इतने सारे दोष होंगे कि जीव जो है वो खाली क्या करेगा। कृष्ण प्रभुपाद जी ने बताया तात्पर्य में कि इस युग के लोग जो होंगे वो नाशवान पदार्थ, जो नाशवान पदार्थ यानी अब देखो हमारे पास दो चीजें भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, असतो न विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, कि सत्य कभी नष्ट नहीं होता और असत्य जो है वो कभी इटरनल नहीं हो सकता। सत्य क्या है आत्मा है और असत्य क्या है ये शरीर है। शरीर नष्ट हो जाएगा और आत्मा का कभी भी नाश नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं इस युग के सामान्य लोग नाशवान पदार्थ के प्रति अधिक रुचि दिखाते हैं, यानी कि नाशवान पदार्थ यानी शरीर के लिए ही जीते हैं। हर कोई जी रहा है कि कैसे मैं अपने इस शरीर को सुखी रख सकूं, बस जीवन का लक्ष्य ये है। एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो किस लिए, कि हम ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन हासिल होगी, ज्यादा से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लाइफ होगी। अगर अर्न कर रहे हैं कमा रहे हैं कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को ज्यादा से ज्यादा सुविधाजनक बनाना। ज्यादा से ज्यादा अर्न करूंगा, ज्यादा से ज्यादा सुखी शरीर को सुख दूंगा। और इसके अतिरिक्त भी जो भी बंदा जो भी कार्य कर रहा है चाहे कुछ भी कर रहा है तो उसका अल्टीमेटली गोल क्या होता है, वो क्या चाहता है कि मैं कैसे अब ज्यादा से ज्यादा अपने इस शरीर को सुखी रख सकूं, मैं अपने इस शरीर लोग मेरी तारीफ करें मतलब मेरे शरीर की तारीफ करें, मैं सुखी रहूं मतलब मेरे शरीर को। तो यहाँ के जो जीव है कलयुग के जो जीव है वो अपनी रियल पहचान जो है रियल आइडेंटिटी क्या है कि हम ये शरीर नहीं हम आत्मा है। लेकिन वो बोलते नहीं हम शरीर है हमारे अंदर एक आत्मा है लेकिन हम शरीर हैं। तो हम जब तक शरीर को कोई अगर बोलेगा ना ये चीज मैं नहीं खाता हूँ या मैं बाहर का नहीं खाता, बोले बेचारा जिएगा कैसे, यानी कि उसके माइंड में यही है कि अगर खाएंगे पिएंगे नहीं मतलब अगर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अय्याश नहीं करेंगे तो वो लाइफ ही नहीं है, बेकार लाइफ है। उनको ऐसा लगता है जब तक अच्छा खाओ मतलब उनकी दृष्टि से जो अच्छा है कि बाहर ये बारबेक्यू में जाओ, मैकडोनल्ड्स में जाओ, केएफसी में जाओ और ये सब पिज्जा बर्गर इत्यादि सब ठूसो और इसके अतिरिक्त अच्छा पहनो। अच्छा पहनो का मतलब ये नहीं है, शास्त्र क्या कहता है अच्छा पहनो का क्या मतलब है कि आपका शरीर ना दिखे, है ना, कि आप शरीर कपड़े क्यों पहनते हैं क्या ताकि आपके शरीर को ढका जाए। क्यों ढकते हैं, क्योंकि ये शरीर नुमाइश करने के लिए नहीं दिया भगवान ने, डिस्प्ले करने की चीज नहीं है, ये शरीर आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिया है कि जैसे इस शरीर में आपके आत्मा को रखा गया है तो इस शरीर के कारण आप ऐसे कार्य करो कि आप आध्यात्मिक उन्नति कर सको, ना कि बल्कि आज क्या होता है आज पब्लिसिटी की जाती है, शरीर को ऐसे दिखाया जाता है और फिर जो इस तरह से तो इवन जो मंदिर में भी आएंगे ना लेडीज वगैरह ऐसे आएंगी ऐसे ऐसे कपड़े दिखाएंगे ऐसे ऐसे जिनसे उनके अंग झलक रहे हैं, तो जो डिवोटीज बेचारे दुनिया से तंग होकर मंदिर में आए हैं तो मंदिर में भी भगवान की बजाय वो किसको देखने लगते हैं, उस लड़कियों को देखने लगते हैं और मति भ्रमित हो जाती है। तो थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए भक्तों को कि हमें किस तरह से खाना चाहिए, किस तरह से पहनना चाहिए, किस तरह से अपना लाइफ स्टाइल बनाना चाहिए, ऐसा कि हम भले हमारे मन में अपराध नहीं है लेकिन हम ऐसा कार्य क्यों करें कि किसी और को अपराध, कोई और हमें अपराध भाव से देखे, है ना, बैकलेस पहनते, स्लीवलेस पहनते, इस तरह क्यों, मतलब इसकी क्या आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी साहब बता रहे हैं कि इतनी अज्ञानता कलयुग में होगी कि लोग जो है वो नाशवान पदार्थ के प्रति अधिक रुचि दिखाएंगे, कि ज्यादा से ज्यादा शरीर और शरीर से रिलेटेड चीजों को समय देंगे और उन्हीं की ओर आकर्षण भी बढ़ाएंगे कि किस तरह से हम उनको ज्यादा आकर्षित करें ताकि लोग मेरी ओर आकर्षित होकर मुझे कमेंट पास करें। और इसका कारण क्या है, श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, अज्ञानता, ये सिर्फ अज्ञानता के कारण है। वो जीवन निधि का मूल्य नहीं समझ सकते, यानी कि वास्तविक आपको ये जीवन मिला है, भगवान ने इतना सुंदर मनुष्य देह जिसको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं कि कभी मुझे मनुष्य का देह प्राप्त हो, ये एकमात्र ऐसा देह है जिसमें हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। देवता भी तरसते हैं कि कभी मैं मनुष्य बनूंगा और भगवान की प्राप्ति करूंगा, ये इतना सुंदर दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, सबसे ज्यादा दुर्लभ क्या है, मनुष्य जन्म, और उसके अंदर उससे भी ज्यादा दुर्लभ क्या है, भगवान का सत्संग। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यवान क्या होता है, जो मनुष्य देह प्राप्त करता है और सत्संग नहीं करता। लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यशाली कौन होता है जानते हो, कि मनुष्य देह प्राप्त करता है, उसे सत्संग का अवसर भी प्राप्त होता है लेकिन उससे वो फायदा नहीं उठाता। जैसे हम, भगवान ने सत्संग का अवसर भी दिया है, कथा श्रवण करने का भी अवसर दिया है, भागवत श्रवण करने का भी अवसर दिया है, और हम अगर वो नहीं सुनते हैं तो फिर है ना, हमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली वो नहीं है जिसको अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कलयुग के प्राणी इतने अज्ञानी है कि वो जीवन मूल्य निधि को, जीवन की निधि का मूल्य नहीं समझ रहे हैं और आध्यात्मिक ज्ञान से अलौकिक नहीं होते। यानी आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मुझे भगवान की सेवा करनी, ये नहीं समझ पाते, बल्कि क्या समझते हैं कि मैं शरीर हूँ और मैं कैसे अपने इस देहात्म बुद्धि में रहकर कैसे इंद्रिय तृप्ति कर सकूं, केवल इतना ही उनके मन में विचार आता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, जो ऋषि होते हैं, वो क्योंकि भूत और भविष्य को जानते हैं, कैसे होते हैं, परावरज्ञ ऋषि, तो वो जानते हैं, किसको जानते हैं, कालेना व्यक्ति रहसा, यानी कि काल क्रम से जो अप्रकट शक्तियां हैं वो क्या करती हैं, युग धर्म व्यक्तिकरण, कि युग के धर्म, युग के अंदर जो चेंजिंग आती है, व्यक्तिकरण होता है, जो दोष होता है, जो हर युग में होता है, तो उसको देखते हैं। तो ऋषि वेद व्यास जी ने भी कलयुग के इन विसंगतियों को, इन दोषों को देख लिया। कब देखा, जब वो सुबह सवेरे बैठे थे ना एकाग्रता के लिए, एकांत स्थान में बैठे थे, तब उनको देख लिया कि कलयुग में साधारण प्राणियों के अंदर ये दोष, युग में इतने दोष होंगे तो साधारण प्राणियों का कल्याण कैसे हो। वास्तव में एक भक्त केवल जन कल्याण के विषय में सोचता है, तो जन सामान्य के कल्याण के लिए उन्होंने एक प्रबंध किया जिससे अंधकारमय युग में प्रगतिशील जीवन बिता सके। कि अब युग तो चेंज नहीं किया जा सकता ना, युग है, कलयुग है, अब हमारी किस्मत फूटी कि हम कलयुग में आ गए, भगवान ने जन्म दे दिया इसमें, वो तो, लेकिन इस कलयुग के लिए नहीं है, ये कलयुग पे तो चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा है, लेकिन कलयुग के अंदर दोष है सो तो है ही, है ना। तो अब कलयुग में तो आ गए हैं, लेकिन इस कलयुग के अंधकारमय युग में भी प्रगतिशील जीवन कैसे बिताएं, तो उन्होंने उसके विषय में विचार किया और ऐसा प्रबंध किया कि इस कलयुग में भी वो प्रगतिशील जीवन बिता सके, यानी आध्यात्मिक उन्नति कर सके। और उन्होंने क्या किया और कलयुग के कौन से दोष थे वो हमें आगे बताएंगे। श्लोक नंबर 17-18 में कृपया साथ रहेगा और मेरे लिए प्रे कीजिए कि मैं अच्छे तरीके से आप सबको ये श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ के श्रवण करा सकूं। हरे कृष्ण।